आज की बात। प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। हसन अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज हम चर्चा करेंगे रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में, भारत के रुख और उस पर विभिन्न प्रतिक्रियाओं की। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ इस देश की सेना और चरमपंथी बौद्धों के हमलों में वृद्धि की चौतरफा निंदा की जा रही है। रोहिंग्या शरणार्थियों का रेला म्यांमार से बांग्लादेश की ओर निरंतर बढ़ रहा है और इस देश में 4 लाख से अधिक रोहिंग्या पहुंच चुके हैं। लगभग 50,000 रोहिंग्या भारत में भी मौजूद हैं, जिनमें से अधिकतर वे हैं जो कुछ साल पहले हुई हिंसा के बाद भारत पहुंचे थे। अब भारत की सरकार ने इन शरणार्थियों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर वापस म्यांमार भेजने की बात कही है। भारत के इस रुख पर इस देश के राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ ने इन्हें इंसानियत के नाम पर शरण देने की बात कही है, किसी ने अतिथि देव भव के धर्म के पालन की दुहाई दी है, तो किसी ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता न करने पर बल दिया है। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थियों का एक पहलू राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इस बात पर लोगों को ध्यान देना चाहिए।
कोई भी सॉवरेन देश इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। रोहिंग्या समुदाय के इलीगल इमिग्रेशन का एक पक्ष नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है, मैं समझता हूं इस हकीकत को भी लोगों को समझना चाहिए।
उधर रोहिंग्या शरणार्थियों का कहना है कि उनके देश में उनका जनसंहार किया जा रहा है, अगर वे जाएंगे तो मार दिए जाएंगे, जब शांति स्थापित होगी तो वे वापस चले जाएंगे।
कलकत्ता पे फिर पानी पार हुआ, वहाँ ला रहे हुआ था हम लोग को भेजा मारने के लिए, धमकी दे रहा, शांति हो जाएगी तो जाएंगे, और शांति ना होगा तो कैसे जाएंगे।
RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव का कहना है कि आतंकवाद की दुहाई देकर रोहिंग्या लोगों को नहीं निकाला जाना चाहिए।
दुनिया में हम भारत का अगुआ बनने का दावा करते हैं तो हम आवाज नहीं लगा सकते, हीरों की रक्षा के लिए, हीरों के संरक्षण के लिए। मैं ये कह देना कि इसमें आतंकवादी रहता, आतंकवादी तो चारों तरफ फैला हुआ है।
अगर आंकड़ों को देखा जाए तो इस समय भारत में तिब्बत के 2 लाख से अधिक और श्रीलंका के लगभग 1 लाख तमिल शरणार्थी रह रहे हैं। कई हजार अफगान शरणार्थी भी हैं और इसी तरह अन्य देशों के भी हजारों शरणार्थी हैं। तो फिर रोहिंग्या शरणार्थियों पर इतना हंगामा क्यों? एक टीवी कार्यक्रम में इस सवाल का जवाब देते हुए भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल के रघु मेनन कहते हैं,
ये सवाल तो मेरे ख्याल से सरकार को देना चाहिए, क्योंकि जैसे हालात हैं बर्मा में, वहां पे सिविलियंस पे अटैक हुए हैं, जिसके चलते हुए 2012 से लेकर रेफ्यूजी फ्लो बढ़ा है, सिर्फ भारत में ही नहीं, बांग्लादेश में, मलेशिया में, थाईलैंड में, साउथ ईस्ट एशिया के कई अन्य जगहों में, इंडोनेशिया में भी गए हैं, क्योंकि उनको कोई मदद नहीं मिल पाई, उनके पास और कोई आसरा नहीं था, इसीलिए वो शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में गए। और हमारा ये मानना है कि भारत एक आजाद भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया जब से बना है तब से हम, जबकि हम रेफ्यूजी कन्वेंशन के सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन जब भी लोग कहीं जुल्मों से या लड़ाई से, वायलेंस से भागते हुए आए हैं, हमने अपने द्वार उनके लिए खोले हैं, चाहे वो तिब्बती शरणार्थी हो, चाहे वो श्रीलंकन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, और म्यांमार से भी पहले आए हैं जब वहां पे मिलिट्री रूल था और डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट को इधर आना पड़ा था। तो मेरे ख्याल से इसके चलते हुए और इंडिया का जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक जो वेट है और वो चाहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बने, उसके अंतर्गत इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक टीवी कार्यक्रम में कहना था कि जब हमारे देश ने तिब्बत और श्रीलंका के लोगों को शरण दी है तो रोहिंग्या मुसलमानों को शरण क्यों नहीं दी जा सकती।
मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आपने, हमारे मुल्क ने तिब्बत से लोगों को इजाजत दी, 1 लाख लोग आए उनको रहने दिया, हमने चकमा लोगों को बांग्लादेश से आकर रहने दिया, वो जो मुजीबुर रहमान के खिलाफ थे, पाकिस्तान तायद कर रहे थे, अब उनको इस सरकार ने सिटीजनशिप दे दिया, मैं ये कह रहा हूं कि टेमिलियंस को हमने श्रीलंका से उनको रहने दिया, बावजूद इसके कि राजीव गांधी का कत्ल हुआ उसके बावजूद भी उनको हमने वापस नहीं भिजाया। बांग्लादेश से हमारे लोग आते, हिंदू भाई आते हैं, पाकिस्तान से आए, वेस्ट पाकिस्तान से 1947 में आए, 65 में आए। तो ये और ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट्स अब तक आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के तहत नॉन रिफ्यूलमेंट प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया है। आर्टिकल 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि आर्टिकल 14 और 21 ना सिर्फ हिंदुस्तानियों पर उसका इतलाक होगा बल्कि एलियंस के ऊपर भी होगा। अब सरकार का पोजीशन क्या है? कल तो एफिडेविट एक डाले फिर उसको वापस ले लिया। मोदी साहब जाने से पहले म्यांमार को एक बयान आया, फिर वहां पर थे एक और बयान आया, तीसरा जब मुल्क को आए एक और बयान आ गया। गवर्नमेंट के पास खुद पॉलिसी, कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अतुल कुमार अंजान कहते हैं कि ये हिंदू या मुसलमान शरणार्थी का मामला नहीं है बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से हल कराया जाना चाहिए।
हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, ये क्या है? अरे सवाल है देश के अंदर, देश के अपने कानून है, देश के तमाम सवाल है। 40,000 लोग हैं बगल के एक मुल्क में, जिस तरीके से म्यांमार के अंदर वहां के लोगों को मार पीट करके खदेड़ा जा रहा है, ये बेसिकली रोहिंग्या रहने वाले कहां के हैं? ये बेसिकली रोहिंग्या रहने वाले हैं बांग्लादेश के। वहां उनको भेजने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में एक चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है। टर्की के राष्ट्रपति गए हुए थे बांग्लादेश, उन्होंने कुछ पैसे का भी बात कही। अरे संयुक्त राष्ट्र संघ बैठ करके बातचीत करके, एक अंतर्राष्ट्रीय मसला है, हमें इन सारे मामलों पर एक बहुत ही संजीदा होकर एक दृष्टिकोण अपनाने चाहिए।
असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि भारत की वर्तमान सरकार शरणार्थियों के संबंध में भेदभाव से काम ले रही है।
सबसे पहली बात मैं बीजेपी के को बताना चाहूंगा, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफ्यूलमेंट की जो पॉलिसी है, इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, मगर इंडिया ने उसको माना। कहां माना? जुलाई 10 को अनिल के राय, जो हमारे काउंसलर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के, यूएनएचआरसी में कहा कि हम डाइल्यूट नहीं करेंगे प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफ्यूलमेंट को। मार्च 2016 को हिंदुस्तान ने यूरोपियन यूनियन और टर्की की जो रिफ्यूजी डील थी उसको क्रिटिसाइज किया और कहा कि नॉन रिफ्यूलमेंट पॉलिसी के खिलाफ है। मई 6, 2016 को एक्सटर्नल अफेयर्स की सेक्रेटरी में सुजाता मेहता ने क्या कहा? सुजाता मेहता ने समझाया जो राजनाथ सिंह नहीं समझ पाए। सुजाता मेहता ने कहा कि रिफ्यूजी वो है जो अपने मुल्क से भगा दिए जाते हैं और उनकी जान को खतरा है और उनको उनके मजहब के नाम पर मारा पीटा जाता है। यह सुजाता मेहता ने कहा। 4 नवंबर 2015 को हमने ऑस्ट्रेलिया को यह कहा कि आप नॉन रिफ्यूलमेंट पॉलिसी को अपने लीगल सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करिए। मयंक जोशी डिप्लोमेट है इंडिया के, नवंबर 3, 2016 को कहा कि हमारी एक तारीख रही है कि हम रिफ्यूजियों को और परेशान हाल लोगों को लेते हैं, बल्कि बरसों से रही है। राहुल कासवान बीजेपी के एमपी राजस्थान के कहा इंडिया कमिटेड है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफ्यूलमेंट पॉलिसी को। अक्टूबर 2015 को अजीत कुमार ने कहा, मैं ये बता रहा हूं कि इंडिया सिग्नेटरी नहीं है मगर प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफ्यूलमेंट पॉलिसी को इंडिया मानता है। सिक्योरिटी की आप बात करते हैं, पूरे अफगानिस्तान में काबुल में पूरा हुंडी का बिजनेस वहां के अफगानी हिंदू और अफगानी सिखों के हाथ में है। हम उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं कि आपने स्क्रीनिंग की। पाकिस्तान में हिंदू सिख और ईसाई को मिलिट्री में जाने की इजाजत है और हम हिंदुस्तान में जोधपुर में हिंदू सोडा राजपूत को सिटीजनशिप दे रहे हैं, क्या आपने स्क्रीनिंग की? मैं बीजेपी से जानना चाह रहा हूं, मुझे एक FIR बताइए 40,000 जो यहां पर होरंगिया कहते हैं जिस पर टेररिज्म का चार्ज लगा हो। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि UNHCR में एक्सक्लूजन क्लॉज है।
भाजपा के एक प्रवक्ता संबित पात्रा सरकार के रुख का बचाव करते हुए कहते हैं,
सरकार ने कहा देखिए हिंदुस्तान में जो है चाहे रोहिंग्यान मुसलमान हो चाहे और कोई हो, अगर वो अवैध रूप से घुसपैठिया बन के हिंदुस्तान के अंदर आया हो तो उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको डिटेन करिए और उसको डिपोर्ट करिए। एक तो टेक्निकल विषय है और एक नेशनल सिक्योरिटी का विषय है। टेक्निकल विषय क्या है? टेक्निकल विषय है कि सपोजेडली मैं जो हूं, मैं किसी बाहर देश से आया हूं और शरण चाहता हूं हिंदुस्तान में, शरण ऐसे मिल जाएगा क्या? शरण जाके आपको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार उस ट्रैवल डॉक्यूमेंट पर ठप्पा लगाएगी और कहेगी कि हाँ ये शरणार्थी बन सकता है। उस प्रकार के शरणार्थी बनने वाले रोहिंग्यानों में मात्र 16,000 हैं।
बहरहाल निश्चित रूप से हर देश के लिए अपनी आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे अहम होती है और उससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकी बताना भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल में जब से वे भारत में रह रहे हैं उनके खिलाफ आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने का एक भी मामला पंजीकृत नहीं हुआ है। भारत को अपने संविधान और कानून के अनुसार ही रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में काम करना चाहिए, लेकिन मानवीय पहलुओं की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अगर अभी इन शरणार्थियों को उनके देश वापस भेज दिया गया तो वहाँ की सेना उनके खून से भी होली खेलेगी और तब स्वतंत्र अंतरात्मा भारत के वर्तमान शासकों से ज़रूर जवाबदेही चाहेगी।